नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया की सफलता की सराहना की। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। ओमान के तट पर तेल वाहक जहाज के डूबने से 13 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता, तलाश और बचाव अभियान जारी। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मारियानो नवनो से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मेक इन इंडिया के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की सराहना की है। पोस्ट में मेक इन इंडिया की झलक दिखलाते हुए बताया गया है कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग हो रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स में निर्यात बढ़ा है। पोस्ट के अनुसार बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूस की सेना कर रही है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे क्रिकेट विश्व कप नजदीक आया, कश्मीर में बने बल्ले की भारी मांग होने लगी। वहीं अमरीकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वाद को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। भारत की यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम से बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दक्षिणी चीन सागर में तैनात हैं। ये विकास भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इसके अलावा अमेज़न की ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे बिक्री में भारतीय उत्पादों का दबदबा है, जो उनकी वैश्विक अपील को उजागर करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेक इन इंडिया से रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
मेक इन इंडिया का प्रभाव अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम ने उत्पादन में बढ़ोतरी, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल देकर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। इससे देश में लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करने में मदद मिली है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माता उत्पादों का स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे उन्हें कम लागत पर घरेलू जरूरतों के अनुसार उत्पादों के डिजाइन और निर्माण करने में मदद मिलती है। भूपेंद्र सिंह के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान इसका आधार। उन्होंने कहा कि किसान और कृषि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगा। बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, आईपीओ अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ। ऐसे दावों के झांसे में ना आए, साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉ वी के पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन देश में औषधि, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री नायडू ने गृह मंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति और जारी किए गए 4 श्वेत पत्रों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर व्यापक योजना तैयार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों को संकलित करने वाली पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स खंड 1 कल नई दिल्ली में जारी की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ई बुक का विमोचन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओमान के तट पर एक तेल वाहक जहाज डूबने से 13 भारतीयों और श्रीलंका के 3 नागरिकों सहित चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता हैं। ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार प्रेस्टीज फाल्कन नाम का ये जहाज ओमान के औद्योगिक बंदरगाह दुकम के पास डूब गया। ये जहाज यमन के अदन बंदरगाह की ओर जा रहा था। ओमान के अधिकारियों ने समुद्री अधिकारियों के साथ खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। पेरू में अयाकुचो के दक्षिणी क्षेत्र में एक बस दुर्घटना में 26 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कल एक बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वोक्सिक ने उत्तर कोरिया के उकसावे के विरुद्ध कड़ी तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शिन ने शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ बैठक में उत्तर कोरिया से मुकाबले के लिए देश की तैयारियों पर चर्चा की। ये बैठक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन द्वारा दक्षिण कोरिया को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी के अगले दिन हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम और पॉल बेरेंजर से भेंट की। डॉ रामगुलाम के साथ मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने स्थायी द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री पॉल बेरेंजर के साथ भेंट के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने कर्बला में सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला और महरौली सहित विभिन्न स्थानों पर ये जुलूस निकाले जाएंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने जुलूस को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। देश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तेलंगाना में ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न हिस्सों में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया पारंपरिक जुलूस कर्बला में समाप्त हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
हैदराबाद आज हिजारी कैलेंडर के मुहर्रम महीने के 10वें दिन दबीपुरा में बीबी का अलावा से निकलने जाने वाली बीबी का आलम जलूस के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जलूस याकुतपुरा रोड, एतबार चौक, ऐतिहासिक चारमीनार, मीरालम मंडी से होकर 9 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चादरघाट पर समाप्त होगा। इस दौरान लोग जलूस की एक झलक पाने और बीबी का आलम पर धत्ते चढ़ाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। जलूस के सुचारू संचालन के लिए हैदराबाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कुतुबशाही काल के आलम के निर्धारित मार्ग पर सार्वजनिक आवाजाही से बचने के लिए बैरिकेड और कांटेदार तार लगाए गए हैं। हैदराबाद से आकाशवाणी समाचार के लिए लक्ष्मी।
बांग्लादेश में भी ताजिए निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुहर्रम की पूर्व संध्या पर संदेश जारी कर हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान विट्ठल की कृपा से समाज में खुशी और समृद्धि बनी रहे। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मारियानो नवोनो से होगा। इससे पहले सुमित ने स्वीडन के एलियास यमिर को 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही सुमित एटीपी टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 68वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इस बीच सुमित नागल और पोलैंड के केरोल द्रेविकी को फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर और लुका वानेशे से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिणी भाग, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इन क्षेत्रों में अगले 3 दिन में बहुत तेज बारिश की भी संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान मध्य भारत और प्रायद्वीपों में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर 19 और 20 जुलाई को बहुत तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 21 जुलाई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि कल तक उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर तेज बारिश और अगले 5 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में कल तक मूसलाधार बारिश होगी, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में 18 और 21 जुलाई को, उत्तर प्रदेश में 20 और 21 जुलाई को तेज बारिश हो सकती है। उधर केरल में मूसलाधार बारिश जारी है। वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण राज्य में काफी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट।
लगातार हो रही वर्षा से केरल का उत्तरी और मध्य भाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी और नदी के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। राज्य में आज बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई। प्रभावित जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं। पलक्कड़, इडुक्की और कोझिकोड जिलों में पर्यटन स्थल बंद हैं। पर्यटकों को रात्रि में पहाड़ी इलाकों में जाने पर रोक लगाई गई है। राज्य में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रमुख बांधों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। मौसम को देखते हुए केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्रिवेंद्रम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए कोंकण और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट और मराठवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी में 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने कल शाम तक श्री अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। ये तीर्थयात्री बालतल, चंदनवाड़ी के 2 यात्रा मार्गों और विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए दक्षिण कश्मीर की लिद्दर घाटी में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा तक पहुंचे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया की सफलता की सराहना की। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। ओमान के तट पर तेल वाहक जहाज डूबने से 13 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 16 सदस्य लापता, तलाश और बचाव अभियान जारी। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है और स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मारियानो नवोनो से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।